गाथा में आप सुन रहे हैं ममता कालिया की कहानी सेवा। अस्पताल के अहाते में गेट से लेकर पोर्च तक कतार में अशोक के पेड़ लगे थे। अपने प्रतीकात्मक अर्थ में वे बड़े सुंदर थे। फिर भी सच्चाई ये थी कि अशोक के होते हुए भी अस्पताल के अहाते में शोक और दुख के दृश्य प्रायः रोज देखने को मिलते। आकस्मिक वार्ड में आकस्मिक दुर्घटना के मरीज लाए जाते, कुछ देर डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय की चुस्ती फुर्ती दिखाई देती, फिर लाल कंबल से ढका स्ट्रेचर या तो ग्लूकोज की बोतल के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ मुड़ जाता या बाहर की ओर, जहां से हाहाकार का एक थपेड़ा कानों पर पड़ता। इसीलिए नरोत्तम सहाय अहाते में बैठने से कतराते। इस वक्त वे पत्नी के पलंग के पास कुर्सी डाले बैठे थे। कहने को उनके हाथ में आज का अखबार था, लेकिन पिछले आध घंटे से उन्होंने इसका एक भी शब्द नहीं पढ़ा। वे न अखबार की तरफ देख रहे थे न बाहर, वे शायद अपने अंदर झांक रहे थे। उनके अंदर अकस्मात एक बियाबान उगकर फैलने लगा था। वे हैरान थे कि ये बियाबान उस दिन नहीं उगा जब वे नौकरी से रिटायर हुए, उस दिन भी नहीं उगा जब उनकी बेटियों की शादी हुई, यहां तक कि जब उनके लाडले बेटे विस्मय को घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, जहां विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में उसकी नियुक्ति हुई थी, वे उदास नहीं हुए। लेकिन अब पत्नी की आकस्मिक बीमारी ने उनको एकदम निरुपाय बना डाला। पहले कभी अकेला लगता तो वे खट से रेडियो खोल लेते, रेडियो के चलते ही वे समूची दुनिया से जुड़ जाते। कभी कभी वे टीवी और रेडियो एक साथ खोल लेते। पत्नी मना करती तो वे कहते, मैं देख रहा हूं किसके कार्यक्रम बेहतर हैं। लेकिन इधर 15 दिन से, जब से पत्नी बीमार पड़ी है, नरोत्तम सहाय भयंकर अकेले हो गए। उन्हें हैरानी थी कि कैसे जरा सी चोट लगने से वो घायल होकर अस्पताल पहुंच गई और यहां भी 15 दिन से बेहोश है। बाथरूम में पांव फिसल जाने से उसकी कनपटी पर हल्की सी चोट आई थी, पर वो तत्काल बेहोश हो गई। नरोत्तम जी ने उसे कोरोमिन, गोल्ड ड्रॉप्स और जो भी उनकी समझ में आया देकर देखा, कुछ न हुआ। लाचार वे पड़ोसियों के कहने पर पत्नी को अस्पताल ले आए। पता चला उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। घबराहट में उन्होंने तीनों बच्चों को खबर कर दी। 2 दिन के अंदर उनकी दोनों लड़कियां आ गईं, मम्मी मम्मी करती। जब नरोत्तम जी ने उन्हें चोट के बारे में बताया, लड़कियों ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, मानो उन्हीं की गलती से पत्नी गिर पड़ी थी। लड़कियों को माँ की बेहद फिक्र थी, पर दोनों अपने अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आई थी, ज्यादा देर टिककर बैठना उनके लिए मुमकिन न था। 3 दिन उन्होंने अस्पताल का उपचार देखकर संतोष प्रकट किया। इलाज ठीक हो रहा है, पास ही सिस्टर का ड्यूटी रूम है। पापा, मम्मी का ठीक से इलाज कराइए, आप ही को ध्यान रखना है इनका। पत्नी की नाक में नली थी, जिसके रास्ते दूध, जूस और पानी उन्हें दे दिया जाता था। ड्यूटी पर तैनात नर्स नियम से 3 घंटे बाद आती और उन्हें पथ्य पिला जाती। बेटियों ने अफसोस में सिर हिलाया, मम्मी होश में होती तो हम कोई ताकत की चीज बनाकर इन्हें खिलाते, पर अब तो लिक्विड डाइट के सिवा कुछ दिया ही नहीं जा सकता। हमारा रुकने का क्या फायदा पापा, हम जाएं? नरोत्तम जी का मन बेटियों के आने से थोड़ा संभला था, उनके जाने की सुनकर वे फिर चिंतित हो गए। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कोमा वाले मरीज कई बार साल साल भर होश में नहीं आते, अगर ऐसा हो गया तो? बेटियों ने कहा, पापा आप तो अभी से घबरा गए, जरा सोचिए, हमारी माँ ने 40 साल आपकी सेवा की है, वो भी तब जब आप स्वस्थ और समर्थ थे। आज वे बीमार पड़ी हैं, तो आपका फर्ज है आप इनकी सेवा करें। अपनी हृष्ट पुष्ट बेटियों को देखकर नरोत्तम जी के मन में आया, कहें, सेवा तो उन्होंने भी तुम्हारी कम नहीं की है बिटिया, चूहे जैसी पैदा हुई थी तुम दोनों। पर वे लड़कियों का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, वे जानते थे उनके ऊपर गृहस्थी और नौकरी के दोहरे झंझट हैं। याद रखिए पापा, हमारी मम्मी के हाथ की छोटी उंगली भी हिलती रहे तो भी इन्हें जिलाए रखना है, हमें अपनी माँ सारे संसार से ज्यादा प्यारी हैं। और कुछ नहीं तो कहने को तो है कि हमारी माँ अभी है, बड़ी बेटी ने अपनी काली साड़ी की पटली को ठीक करते हुए कहा। पुराने दिनों के साथियों को खबर लगी तो उनमें से कई आकर मिसेस सहाय को देख गए। सहृदय लोग थे, सबने अपने अपने फोन नंबर नरोत्तम जी को दे दिए जिससे किसी भी जरूरत में वे उनसे संपर्क कर सकें। 4-5 दिन में नरोत्तम जी की डायरी फोन नंबरों से भर गई। एक दिन दो पड़ोसी भी उनसे मिलने आए। मरीज की हालत जैसी की तैसी थी, बस इतना सुधार था कि वे कभी कभी अपने बच्चों के नाम अस्फुट स्वर में दोहराती। पड़ोसियों ने बड़ी आत्मीयता से कहा, सहाय साहब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए, आप भी यहां रहते रहते बहुत थक गए होंगे। हमदर्दी के बोल सुनकर नरोत्तम जी को लगा वे वाकई बहुत थक गए हैं। उन्होंने महीनों से कोई मनपसंद चीज नहीं खाई है। अस्पताल में कैंटीन के खाने की तरफ उनकी देखने की भी इच्छा नहीं होती थी। उन्होंने बड़े संकोच से कहा, अगर हो सके तो थोड़ा मीठा दलिया बनवाकर भिजवा दीजिए। जरूर जी जरूर, पड़ोसी ने कहा और विदा ली। अगले दिन सुबह पड़ोसी दफ्तर जाते हुए 2 मिनट के लिए अस्पताल आए। लो जी सहाय साहब, इसमें दलिये का सब सामान है। वाइफ ने कहा है उसे तो दलिया बनाना आता नहीं है, यहाँ कैंटीन में बनवा ले आप। नरोत्तम जी हक्के बक्के दलिये, चीनी और दूध के पैकेट देखते रह गए। पत्नी की चेतना जब जब लौटती वो विस्सू विस्सू पुकारती। नरोत्तम जी ने एक परिचित से बेटे को फिर फोन करवा दिया।